आगे देखें तो वो कहते थे, जब उनसे ये कहा जाता तो वो कहते, उनका जवाब क्या होता सोचें, वो कहते थे कालू, अब ये मुनाफिक कह रहे हैं, अनुमिनो, क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुफहा, जैसे कि ईमान लाए बेवकूफ। किसको बेवकूफ कह रहे हैं ये, किसको बेवकूफ कह रहे हैं, अन्नास को, इनके जैसा था ना, इनके जैसा ईमान लाओ, वो ये नहीं कह रहे कमा आमन अन्नास, क्या हम इस तरह ईमान लाए जैसे लोग ईमान लाए, नहीं वो कह रहे हैं जैसे बेवकूफ ईमान लाए, दीज फनेटिक्स फूल्स, जैसे हम कहते हैं दीज इडियट्स, ऐसी बात करते हैं ना, वो इस सेंस में सुफहा ही है यहां पे, फनेटिक एक्सट्रीमिस्ट, ये तो फूल है, ये तो बेवकूफ है, ये ऐसा ही मान लेकर आए, इनको ना कोई अपनी दुनिया की परवाह, ना कोई अपनी इनको माल की परवाह, ना अपने बच्चों की परवाह, उधर से घर छोड़ के आ गए, यहां पे आके बैठ गए, लो अब ये जनाब ये इनका दीन है, लो ये कोई बात है, आखिर इंसान को अपनी दुनिया भी देखभाल के चलना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, खुद अपना नफा नुकसान का ख्याल करना चाहिए, सारे खतरे मोल रहे हैं, जब इनको बुलाओ जंग के लिए चलो फौरन हाजिर हो जाते, जब इनको कहो माल लेकर आओ फौरन लाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर देते, ये भी कोई बात है, ऐसे हम ये इस तरह की बेवकूफियां करें, हम ऐसे फनेटिक हो जाएं, आप तो कहते हम एक्सट्रीमिस्ट ही बन जाएं, ना बाबा हम नहीं इस तरह का ईमान ला सकते, आप हमें ऐसा चाहते हैं, अगर इंसान को अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये तो नहीं कि सब कुछ ही बस हर वक्त बस तैयार खड़े हुए, जान मांगो जान दे दी, माल मांगो माल दे दिया, ये जगह छोड़ दो जगह छोड़ दी, घर बार छोड़ दो घर बार छोड़ दिया, और ऐसे बन के बैठ जाए, ये कौन सा दीन कहता है, कौन सा दीन ये कहता है, कौन सा इस्लाम ये कहता है, हमारी ये बातें होती है ना, वो भी ऐसे ही कहते थे, जाहिर है बजाहिर देखने में, बजाहिर देखने में जिसको आखरत पर ईमान ना हो ना, तो उसको तो बजाहिर देखने में ये बेवकूफी लगती है, उसको तो यही लगता है कि ये तो नुकसान कर रहे हैं अपना भाई, लेकिन जिसने इस दुनिया की हकीकत को पहचान लिया हो ना, ये दुनिया तो आरजी है, अगर कल की बजाय आज खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो खत्म ही हो जानी है, यहां से तो मुझे जाना ही है, कल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चली जाऊंगी, असल बात यह कि मेरी आखिरत बन जाए, मैं वो ना गंवा दूं, अब ये अन्नास इस तरह सोच रहे हैं, और ये इनको सिर्फ सामने दुनिया नजर थी, इनका मर्ज क्या था, मैंने आपको बताया था ना, हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, अब वो सिर्फ दुनिया को जो सामने देख रहा है, और अल्लाह ताला ने क्या मुत्तकीन की अलामत बताई थी, जरा पीछे देखें, पीछे जाएं और देखिए आयत नंबर 4 में, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, उनको तो यकीन है आखिरत पे, इनको थोड़ी यकीन था, अगर इनको यकीन हो मुत्तकीन ना बन जाए, तो ये यकीन की कमी है ना, अब यकीन जब है ही नहीं है कि आखिरत है वहां पे जाना है, मैं उसको नहीं गिव अप कर सकती, यहां का नुकसान हो वो भले होता फिर, अब मैं इसकी खातिर जो है ना उसको गंवा दूं, ये नहीं मैं कर सकती, तो वही जाहिर है कुछ लगाएगा ना, वही यहां के नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जिसके लिए ये दुनिया ही सब कुछ है और उसको आखरत का यकीन नहीं है, वो कहेगा ये बेवकूफी है, बेवकूफी है कि आप ऐसी चीज के ऊपर जिसने को ना देखा ना सुना ना किसी ने आके कोई बताया वहां से आके कि भाई वहां पे एक जन्नत है, उसके लिए आप ये सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जब आएगी तो देखा जाएगा भाई, अभी क्या करने की जरूरत है, अभी तो हमारे ये मसले हल हो जाए ना, कोई हमारा ये मसला है, कोई रोजगार का है, कोई फलां चीज का है, कभी तजारत का है, कभी हमारे अभी फल पक रहे हैं, बाग है, खड़ी फसलें हैं, ये है वो है, अभी तो हमारे ये मसले मसाइल हैं, अब हम इनको ना तवज्जो दें तो हम आखिरत कर लेके बैठे, वो पता नहीं कब आनी है, तो जब आएगी तो जहां दूसरे जा रहे होंगे हम भी चले जाएंगे, कुछ फेमिलियर लगती है आपको ये बातें, कभी सुनी है कि नहीं सुनी, या आज ही सुन रहे हैं, سبحان اللہ. تو ان کو کہا یہ نہیں گیا کہ کما آمن السابقون کما آمن المؤمنون, ان کو کہا گیا کما آمن الناس. کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے الناس کہا گیا کہ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی تم بھی لا سکتے ہو. دیکھو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں لا سکتے, تم نہیں کر سکتے, یو کین ڈو اٹ, تم بھی کر سکتے ہو. اور دیکھیں ایک پازیٹو بات, سبحان اللہ, کہنے والے جو ہیں, یہ نہیں بتایا کون کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے اچھے جو ایمان والے تھے, پکے ایمان والے, وہی کہہ رہے ہیں نا. تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو پھر وہی کہتے ہیں, اچھا کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا, اور تمہارا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے, جاؤ جاؤ, یہ ایمان, یہ تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے. کتنی پازیٹو بات ہے نا اس میں, سبحان اللہ. بتانے والے کی طرف سے سوچے کتنی پازیٹو بات ہے, وہ نیگیٹو میں نہیں جا رہا, تمہارا ایمان قبول ہی نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیتا تو نیگیٹو بات ہوتی, ایسا ایمان یہ کیا قبول ہوگا, اچھے تم کلمہ پڑھنے والے ہو کہ اس کے بعد یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو. ہمارے تو فوراً یہ فتوے ہوتے ہیں نا, اچھی تم قرآن پڑھنے والی ہو اور یہ کرتی ہو, یہ کرتی ہو. ہم نیگیٹو میں بات کرتے ہیں, اور انہوں نے کیسے بات کی, پوزیٹو. ایسا ایمان لے کر آؤ, اور تم کر سکتے ہو. دیکھو لوگوں نے بھی تو کیا ہے, اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو بیوقوف ہے, ہم تھوڑی بیوقوف, ہم اپنا سارا کچھ ہی لگا دیں اب یہاں پہ, ہم سے نہیں اتنا ہوتا. راج بھی کہتے ہیں لو ان کا کیا کام ہے, کل کا کہتے ہیں کل تم تو پاگل ہی ہو کے ان کے پیچھے لگ گئی چھوڑ چھاڑ کے ساری, کل کا کس کو پتا ہے, بس ان کا کام ڈرا ڈرا کے لوگوں کو مارا ہوا ہے بس, اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. ہم کو بے وقوف ہے کہ ہم اس طرح سے چلیں, ہمیں دیکھ بھال کے چلنا ہے, آخر ہمیں یہاں ہی پہ رہنا ہے. ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے یہی رہنا ہے. جس دن یہ پتا چل گیا نا, ہمیں یقین آ گیا کہ یہی نہیں رہنا, یہاں ہی نہیں رہنا, تب مسئلے حل ہو جائیں گے, تب سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. مگر ہم نے یہ سوچا ہوا ہے ہم نے یہی تو رہنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس, اچھا اب ان کی بات جو ہے نا سفہا والی بات ہے, اس کو سوچیں اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی آپ کو آگے گھر میں کوئی آگے کہے کہ میں نے بھائی ایک جگہ زمین کی پیمنٹ کرائے ہوں, ایک گھر کی پیمنٹ کرتی ہے, کون سے گھر کی آپ پوچھے تو کہیں وہ بس ایک گھر ہے بہت خوبصورت ہے, بہت پیارا, بہت ایسے ویسے, اتنی اس کی تعریفیں کریں. اچھا وہ گھر ہے کہاں پہ, کدھر ملے گا, کس شہر میں ہے, یہ نہیں مجھے پتا, اس کا ایڈریس کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. اچھا تو کوئی راستہ ہوتا ہے جا کے دیکھ کے آئیں کدھر بن رہا ہے وہ, اب وہ بھی نہیں بتا سکتے. کب ملے گا وہ, ابھی تو نہیں ملنا, وہ تو پتہ نہیں ابھی 30-40 سال بعد ملے گا. تو آپ کہیں گے کیا بے وقوفی ہے, تمہیں تو کوئی کسی نے لوٹ لیا نا. عام لوگ ایسا ہی کہیں گے, اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سفہا ہیں, کیونکہ صحابہ کرام اپنا گھر کدھر بنا رہے ہیں جس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے, ایڈریس نہیں کوئی بتا سکتا, جا کے دیکھ کے بھی نہیں آ سکتا, ہے نا. اور کب ملے گا یہ بھی پتا نہیں, جب تک زندگی ہے اس میں تو نہیں ملنا, موت کے بعد ہی ملے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اب ورڈک وہاں پہ بھی دیا گیا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ورڈک دے دیا کہ یہی لوگ ہیں جو مفسد ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا, ان کا فیصلہ سنا دیا, الا انہم ہم السفہا. یہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں, اصل بیوقوف یہ ہیں, ان کو کل کو پتہ چلے گا کہ اصل گھاٹے میں کون رہا, اصل بیوقوفیاں کس نے کی, جس نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے اوپر اپنا سب کچھ لگا دیا, یا جو دنیا میں ہی سب کچھ لگاتا رہا. تو سب پتہ چل جائے گا وہاں پہ جاؤ گے تو, یہ کون تھا عقل مند اور کون تھا بیوقوف, کہ جب انسان سے پوچھا جائے گا کم لبے تم کتنا ٹھہرے ہمیں, تو کہے گا لبسنا یومن او بعد یوم, میں تو ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا تھا, तो इतनी थोड़ी देर के लिए ठहरे। उसके लिए तुमने सब कुछ लगाया, सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारी अपनी एनर्जी, सारा अपना इल्म, सारा अपना पैसा उसी को बनाने संवारने में लगाती रही, सारा अपना टाइम, जिंदगी के कीमती लम्हात, अपनी जवानियां, सब कुछ उसके लिए लगा दिया, अपनी औलादों को, हर चीज को उसी के नाम कर दिया उस दुनिया के। वो तो खत्म हो गई है, वो तो आई नहीं यहां पे, तो बेवकूफ कौन है? वो जिसने आज के लिए मेहनत की और जन्नत पाली, या वो जो उसके लिए मेहनत करता रहा, जो कि जमीन इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, जो जमीन को ऐसे ज़िलज़िले इतनी जोर से इसको हिलाया जाएगा, ये तो रेजा रेजा हो जाएगी, ये तो पुरजे पुरजे हो जाएगी। उसमें तुमने घर बनाए थे, वो जो तबाह हो जाने वाली थी, उसमें तुमने जायदादें बनाई थी, उसमें तुमने मेहनतें की थी, वो तो उसी टाइम के लिए तो ठीक था, तुम्हें उतना ही करना चाहिए था जितना उसमें रहना था। ये तुम उसी में बनाते गए बनाते गए, उसने तो खत्म हो जाना था, तुम्हें बताया नहीं गया था। तो वो तो आखिरत में तो कोई जमीन का नामो निशान भी नहीं, किधर जाएंगे, किधर से लेकर आएंगे, वो तो रह गई पीछे, वो तो खत्म हो गई। अब खाली हाथ खड़े हुए तो बेवकूफ कौन बने फिर? अला इन्नहुम हुमुस्सफहा वलाकिन ला यालमून, लेकिन इनको इल्म ही नहीं, इनको पता ही नहीं, यही तो सबसे बड़ी जिहालत है। ला इल्म होना क्या होता है? जिहालत, सबसे बड़ी जिहालत यही है। और देखिए पहले आया कि वो उनको शऊर नहीं है। शऊर क्या चीज होती है? इंसान को इस बात का तो पता होना, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, फसाद क्या है, इसलाह क्या है, बुराई क्या है, भलाई क्या है, समझ हो उसको, ये समझ हो। लेकिन उसमें वो बिल्कुल बेशऊर है, समझ से खाली है। और यहां पे क्या, इल्म से खाली है, जाहिल है। जाहिल को यही नहीं पता, उसको इतना इल्म ही नहीं है कि इसने खत्म हो जाना है। और मेरी बेवकूफी है कि मैं सब कुछ इसी के नाम कर रहा हूं। और फिर अगली बात इनकी देखें, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, और जब ये मुलाकात करते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम भी आपके जैसे ही हैं, आमन्ना, हम भी ईमान लाए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अकेले होते हैं अपने शैतानों के पास, कौन है इनके शैतान? वो जिन शैतान नहीं, यही जो इनके बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े लीडर हैं मुनाफिकीन के, तो जब उनके पास जाते हैं ना, वो कहते तुम बड़े मिल के बैठ रहे हो मुसलमानों के साथ, मैं तो तुम्हें देखा था बहुत तुम उनके साथ खुश खुश घूम रहे थे। तो कहते हैं कालू इन्ना माकुम, हम आपके साथ हैं, इन्ना मा नहनु मुस्तहजियून, हम तो उनसे मजाक कर रहे हैं, वी आर जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे थे हम उनके साथ, हम तो उनके साथ बस दिल बहला रहे थे, हम दिल से थोड़ा ही उनके साथ हैं। भाई रखना पड़ता है ना, क्या करें, आपको पता है ना, फिर करना पड़ता है, तो उनको भी राजी रखना पड़ता है, ये जो दीन वाले ना, इनके साथ भी थोड़ी रखनी पड़ती है, असल में हम थोड़ी उनके साथ है, जाने दो, कोई पागल है हम इनके साथ होंगे। तो यहां से आपको क्या पता चला, कैसा होता है मुनाफिक? डबल फेस, फेस नजर आ रहा है, एक तरफ एक चेहरा है, दूसरी तरफ दूसरा चेहरा है, एक तरफ एक तरह से जाता है, दूसरी तरफ दूसरी तरह से जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन शख्स, वर्स्ट पर्सन, वर्स्ट वो है जो दो रुखा है, दो डबल साइडेड, किसी के सामने एक रुख होता है और किसी के सामने दूसरा रुख होता है। बाज लोग जाते हैं ना एक मजलिस में, कोई दीन वाली मजलिस में जाएंगे तो वहां पे इतने दीनदार के जैसे हमसे ज्यादा कोई दीनदार ही नहीं, फिर उनको कहीं और देखा तो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये वही है, ये वही बंदी है, ये हाल हुलिए, ये इसके चाल चलन, ये इसके तरीके, ये वही बंदी है। बस जी मजलिस मजलिस का फर्क है, वहां पे कोई और मजलिस थी तो वैसा भेस बना लिया, यहां पे कोई और मजलिस है तो फिर उठ के वैसे ही शुरू हो गए उस तरह के काम करने। तो डबल फेस है, हर एक के लिए एक फेस रखा हुआ, इनको राजी करने के लिए इनके जैसा फेस है, उनको राजी करने के लिए उनके जैसा फेस है। इधर की तरफ आते हैं दीन वालों में बैठ गए तो दीन की अपनी कहानियां बता दी, हाँ और वो उधर दूसरी तरफ गए तो उनको उस तरह की कहानियां बता दी अपनी, उनमें दीन की बैठ के कोई बात नहीं करनी, वो फिर माइंड करेंगे। और इनकी तरफ आके कोई दुनिया की नहीं ऐसी बात करनी, कोई इधर उधर की जो फन हम करते रहते हैं इधर उधर वो नहीं करनी, क्योंकि फिर देखिए ना इनके साथ कैसे बनेंगे। तो इनके लिए इनकी तरह की उनकी थी बातें, समझ आ गई बात। अच्छा एक और बात यहाँ पे नोट करें कि ये मुनाफिकीन के नाम तो किसी को पता नहीं थे, तो ये मुसलमानों में इसी तरह रहते थे जैसे दूसरे मुसलमान रहते हैं, मुसलमानी कहलाते थे। तो आप जरा सोचिए कैसी सोसाइटी है वहां पे, जिसमें एक तरफ तो हजरत उमर हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, तली हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और उन जैसे और हैं सहाबा, और दूसरी तरफ ये मुनाफिकीन भी हैं, ये भी तो मुसलमानी कहलाते थे, ये तो सहाबा ही थे ना, ये कहलाते होंगे। तो ये कोई ना समझे कि उस दौर में भी सारे ऐसे ही थे जैसे हजरत अली और हजरत उमर और इनके ईमान थे, वहां पे भी मिक्स लोग थे। हाँ ये जरूर है कि मेजॉरिटी जो थी वो सही थी, ये माइनॉरिटी में थे, मगर वहां पे भी मिक्स सोसाइटी है, हर एक का ईमान एक जैसा एक लेवल का नहीं है, हर एक अबू बकर सिद्दीक नहीं है, हर एक उमर नहीं है, हर एक अबू उबैदा बिन जर्राह नहीं है, हर एक हुज़ैफा बिन यमान नहीं है। लेकिन अगर ये देख के कोई ये कह देता ये बड़े देखे हैं मुसलमान, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी बैठ के ऐसे होते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन इनका था ना काम कि झूठ बोलते थे मुनाफिकीन, और इनका काम था ये बेईमान थे, तो यही तो हमने देख लिया बड़े मुसलमान बेईमान होते हैं, और हमने देख लिया ये तो वादा खिलाफ होते हैं, मुनाफिक वादा खिलाफ भी थे। अब किसी को थोड़ी पता ये मुनाफिक है, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, अब हमें तो हमें भी नहीं पता कि उन सबके नाम क्या थे। तो अगर कोई उस वक्त कहता कि हम क्यों मुसलमान हो, बड़े देखे हैं हमने मुसलमान, वो तो ऐसे हैं, और यहां कोई कहता हम क्यों अमल करें, हम क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़े देखे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते हैं और वो ऐसे ऐसे होते हैं, क्योंकि ये मुनाफिकीन बैठते थे आपकी मजलिस में। तो सोचिए ना अगर उस वक्त भी कोई ऐसा कहता जैसा आज लोग कहते हैं, बहुत देखे हैं कुरान पढ़ने वाले वो तो अमल करते नहीं है, तो हम फिर क्यों पढ़े, यानी उनको पढ़ने का इल्म लेने का तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो हम क्यों फिर इल्म लें, हम तो नहीं सीखेंगे। तो मेरी बहनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सारे पक्के मोमिन नहीं थे, तो आज कहां से आपको ऐसा मिलेगा कि हर एक पक्का मोमिन हो तो तभी आप दीन की तरफ आएंगी। और आप इस चीज का इंतजार करती हैं तो ये चीज तो वो बेस्ट ऑफ द टाइम्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जमाना सब बेहतरीन जमाना है, यानी उस वक्त लोग बेस्ट थे, उस वक्त के जो लोग थे। तो अगर उस टाइम में भी मुनाफिकीन भी बीच में नजर आते हैं तो आज फिर क्या हाल है, आज तो मेजॉरिटी हमारी किस हाल में, ईमान किस किस लेवल पे है, तो आज कहां से आपको मिलेंगे। तो ऐसे लोग तो फिर अब अपने ईमान की खैर मनाएं और अपने अमल की खैर मनाएं, क्योंकि फिर तो कभी भी वो अमल नहीं कर सकते अगर वो इस चीज का वेट करते रहे कि हाँ सारे बामल हो जाएं, सारे पक्के मुत्तकी हो जाएं, तो तब मैं कहीं दीन की तरफ आऊंगी। तो ये अच्छा बहाना अगर किसी ने घड़ा हुआ है तो फिर तो वो इंतजार ही करता रहे, क्योंकि ऐसा तो जमाना नहीं आने वाला। अगर वो जमाना ऐसा नहीं था तो आज तो बिल्कुल ही आपको नहीं मिलेगा ऐसा जमाना। आज तो मुनाफिकत अपने उरूज पे है। तो ये बहाना छोड़ के कोई और फिर बहाना ढूंढे, क्योंकि ये इसके अंदर तो कोई ये इसका फायदा नहीं है। तो अब ये लोग ऐसे क्यों करते थे कि मुसलमानों के पास जाके कह रहे हैं हम ईमान लाएं, इतनी उनको क्या मुसीबत पड़ी थी, एक तरफ क्यों नहीं हो जाते थे? इसलिए कि मैंने आपको बताया था ना कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वो देख रहे थे कि नेक्स्ट राइजिंग एम्पायर जो है वो मुसलमानों की है, अगला दौर इस्लाम का ही होने वाला है। जैसे आप देखते हैं कोई पार्टी हुकूमत में आने वाली हो तो लोग पहले पहले उसके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, भाई ये पावर में आने वाली है, इनके साथ मिल जाएंगे तो कल हमें भी पावर मिलेगी। तो उनसे कहा गया नहीं भाई ऐसे नहीं है, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो तुम दिखाओ फिर अपना ईमान, इन मुहाजरीन की तरह इन अंसार की तरह ईमान ला के दिखाओ, तब पता चले। तो लेकिन वो तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, तो अकेले में तो ये कह रहे हैं कमा आमन सुफहा, लेकिन उनके सामने नहीं जाके कह रहे कि तुम तो सुफहा हो, उनके सामने कह रहे आमन्ना, हम भी ईमान लेकर हैं, हम भी आपके जैसे हैं। देखा ऊपर से क्या है और अंदर से क्या। अच्छा, अल्लाह ताला ने इनका इनके लिए भी वर्डिक्ट दे दिया, अल्लाहु यस्तहजी बिहिम, ये कहते हैं हम मजाक उड़ा रहे हैं, हम उनका बस मजाक करते हैं, हम तो उनके साथ बस ऐसे ही राउंड कर रहे होते, असल बात ये है कि हम उनके साथ नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उनका क्या मजाक करेंगे, अल्लाह इनका मजाक उड़ा रहा है। अब ये क्यों बात कही गई, एक इसकी वजह तो ये है कि जैसे जो बात जैसे अब आगे आएगा इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, उनके लिए कहा गया कि वो मकर करते हैं तो अल्लाह उनके साथ मकर करता है, वो चाल चलते हैं अल्लाह उनके साथ चाल चलता है, यानी उसके जवाब में वो बात कही जा रही है, वो मजाक करते हैं अल्लाह उनके साथ मजाक करता है, तो जवाबन ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब जहन्नम में डाला जाएगा ना जहन्नमियों को, तो ये जो ये ऐसे मजाक करने वाले होंगे इनसे कहा जाएगा जहन्नम से निकलो और जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जब वो जहन्नम के खुले हुए दरवाजे देखेंगे तो निकलने के लिए भागेंगे तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर दरवाजे खोले जाएंगे, फिर इनको कहा जाएगा निकलो अब जाओ जाओ बाहर, वो फिर भागेंगे तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो मोमिन जो होंगे जन्नत में अपने तख्तों पे बैठे हुए ये मंजर देख रहे होंगे और वो देख के हंसेंगे आज इन पे। सूरह मुतफ़िफ़ीन में है ना, फल यौम अल्लदीना आमनू मिनल कुफार यदहकून अलल अराइक यंदुरून हल सुब्बिल बल कुफारु मा कानू यफअलून, ये आज क़यामत के दिन ईमान वाले काफरों पे हंसेंगे, वो ईमान वाले तख्तों पे बैठे होंगे और देख रहे होंगे कि इनको ये सजा मिल रही है। तो इन्होंने मजाक किया था, अल्लाह ने इनके साथ मजाक कर दिया, अब ये दिबुक तो तुम अपने मजाक का जवाब ये तुम्हें मिलता है। इसी तरह एक और भी बात है, जब मिसाल के तौर पे कोई किसी के लिए गड़ा खोदे, कोई किसी के लिए गड़ा खोदे कि ये इसमें गिर जाए, और वो जिसके लिए गड़ा खोदा है वो तो बच जाए और ये खुद जाके अंदर गिर जाए, तो वो कहता है ना, अब मैं बताऊं कि किस तरह किसी के लिए गड़ा खोदा जाता है। हाँ, इसी तरह यहां पे वो मजाक कर रहे हैं, वो मजाक क्या करेंगे, अल्लाह उनसे मजाक करता है, तुम खुद ही अपने मजाक का शिकार होगे, तुम तो खुद ही अपनी हंसी उड़वा रहे हो, तुमने तो खुद अपना आप मजाक बनवा लिया। क्योंकि इनकी कोई इज्जत भी नहीं रह गई थी ना माशरे में, अक्सर जो मुनाफिकीन थे जब इस तरह की हरकतें करते थे, जाहिर है कहीं ना कहीं से जब इनकी बात खुल जाती थी, कोई ना कोई दिन तो खुल ही जाती है ना कोई बात, हर चीज एक हमेशा छुपी तो नहीं रहती, एक वक्त आता है कि सबके सामने आ जाती कि इसने वहां पे ये बात की थी और आके मुझे ये बातें कहती है, तो जब इनकी ये बात खुल जाती थी तो सोचेंगे फिर इनके लिए कितनी मुश्किल होती थी। وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ताला इनको अभी क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि उसने उनको ढील दे दी, इनकी सरकशी में ये भटक रहे हैं, ये अपने इस मजाक उड़ाने को और इसको समझते हैं कि शायद हमें हमारी तो कभी पकड़ होनी ही नहीं है। इंसान यही समझते ना, जब कोई गलत काम कर रहा होता है और खुद मानता भी नहीं है और उसको कोई सजा भी नहीं मिल रही, तो वो ये सोचता है कि किसी को भी नहीं पता चला, नाउज़ुबिल्ला वो समझता है कि अल्लाह ताला को भी नहीं पता चला और मैं इसके साथ गेट अवे कर जाऊंगी। हालांकि अल्लाह की तरह से वो ढील होती है, ढील ढील। अच्छा, आपने कभी देखी ढील ढील देना, समझते हैं आप, मसलन मिसाल के तौर पे किसी मसलन एक कुत्ते को बांधा गया एक रस्सी से, अब आप उसको ढील देते हैं तो ढील कैसे देंगे, रस्सी और उसकी लंबी करते जाएंगे, ठीक है, और आपने उसको बांधा हुआ। अच्छा, एक कुत्ता मसलन उसकी एक फुट की रस्सी है, तो अगर वो रस्सी खींचता भी है, खींचेगा लेकिन उसके बाद वो थक के वहीं खड़ा हो जाएगा। दूसरा, उसको आपने ढील दी दिया, उसकी आपने रस्सी कितनी करी दी है, 100 फुट की रस्सी करी दी है। अब वो दोनों बागी हैं, एक वो था जिसकी एक फुट की थी, वो भागना चाहेगा खींचना चाहेगा, उसको इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन एक जिसकी आपने रस्सी की ढीली की हुई है 100 फुट की कर दी है, अब वो बागी जब भागना चाहता है तो अब वो कुत्ता तेज भागता है, तेज भागता है। अब क्या होगा, 99 फीट तक तो वो बड़ा तेज भागेगा, 99.9 तक भी भागेगा, लेकिन जब 100 फुट पे आ जाएगी रस्सी तो कितनी जोर से खींचेगी बताएं, कितनी जोर से खींचेगी ना, वो चोक करने के करीब हो जाएगा, हो सकता है मर ही जाए। तो जब ढील दी होती है ना, इसी तरह है ढील देना। जिसको नहीं ढील मिली होती वो फिर भी अच्छा है लेकिन ठीक रहेगा, लेकिन जिसको ढील मिल जाए वो ढील को अपने लिए समझता है मैं आजाद हूं, उस कुत्ते ने समझा मैं आजाद हूं, लेकिन जब वो खींची उसकी रस्सी, क्योंकि वो आजाद नहीं था, ये तो ढील थी, रस्सी तो अल्लाह के हाथ में है सबकी, हाँ वो ढील देता है, ढील देता है, ढील, तो जाओ जाओ भागो 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 भागो, इंसान भागता है भागता है, क्योंकि बागी जो हुआ अल्लाह का, और समझते मैं तो आजाद हूं, अल्लाह ने तो मुझे कभी पकड़ना ही नहीं, मैं तो ठीक हूं, अगर पकड़ना होता तो आज तक ना पकड़ता। वो 50, 60, 70 फुट भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और ये ही सोचता जा रहा है कि मैं बहुत आजाद हूं, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब 100 फुट आया तो फिर क्या हुआ। तो ये इंसान का हाल होता है जो बागी हो जाता है, वो गले की रस्सी फिर फंस जाती है और उसकी तबाही है फिर। तो ये भी सोचते हैं कि हम बच गए, हमारा किसी को भी नहीं पता चला, ना पता चलेगा, नहीं, अल्लाह ने ढील दी हुई है, तुम भाग के जाओगे कहां। तो ये या महून है, उसमें टमक टोइया खा रहे हैं, इधर गिरते पड़ रहे हैं, उधर गिरते पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटरनल साइट ही नहीं है, सर मारते फिर रहे हैं, अपनी सरकशी में अंधे हुए पड़े हैं। اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی بدلے ہدایت کے خرید لی۔ دو چیزیں مل رہی تھیں, ایک تھی گمراہی اور ایک تھی ہدایت, انہوں نے کیا لیا اور کیا چھوڑا, ہاں سبحان اللہ, ہدایت بھی مل رہی تھی, دے ہیڈ دا چوائس, لیکن انہوں نے ہدایت نہیں لی اور گمراہی لے لی۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے, कहां से मिलती हिदायत, शुरू की आयत याद, हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत इस कुरान में है, ये अल्लाह की किताब से मिलती होती है। जब इंसान अल्लाह की किताब को छोड़ देता है तो फिर तो जाहिर है वो या महून ही होगा, फिर उसे इधर उधर जाता गिरता पड़ता ही रहेगा, फिर कभी किसी की बात पे चल पड़े, उसने ये कहा तो वो कर लिया, किसी ने मना कर दिया तो उससे रुक गए, कोई शैतान ने वसवसे डाल दिए तो फिर वो इंसान उस तरह से चल पड़ा, उस रास्ते पे चल पड़ा, कभी अपनी सोच से कोई काम करना शुरू हो गया, कभी किसी मजलिस में बैठे हुए किसी ने कोई बात शेयर की तो उसकी बात सुन के उस रास्ते पे चल पड़ा, उसको उसको खुद नजर तो आता ही नहीं है, समझ ले। अब तो जाहिर है वो लॉस्ट ही होगा ना, दलाला क्या है, गुम राह, इसको अलग अलग करें गुमराह को, गुम और राह, राह क्या होती है, रास्ता, और गुम, गुम कर देना, जो रास्ता गुम कर दे उसको हम क्या कहते हैं, लॉस्ट, लॉस्ट है वो, तो लॉस्ट ही होगा ना जाहिर है, जब उसको सही रास्ता ही नहीं पता। मैंने आपको क्या बताया था, हिदायत क्या है, गाइडेंस है, रहनुमाई है, एक रास्ता सोचे उसके ऊपर किधर किधर जाना है, ये है हिदायत, उसके ऊपर चलना हिदायत है, मंजिल तक पहुंचना हिदायत है। हिदायत के तीन माने बताए थे ना, जिसने उसको फॉलो ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है रास्ता कहां है, या उस पर चला ही नहीं, वो तो लॉस्ट ही होगा ना, डायरेक्शन ही नहीं पता उसको। तो इन लोगों ने, इन मुनाफिकीन ने क्या किया है, इनको मिल रही थी हिदायत, इन्होंने हिदायत छोड़ के तो गुमराही ले ली, इन्होंने खुद चूज किया, इनको हिदायत तो इतनी उससे एलर्जी होती है, ये कहते हैं कि कुरान सुनाते हैं हमसे तो नहीं भाई, इतनी देर बैठा जाता, ये तो बड़ा मुश्किल है, बोरियत होने लगती, एक ही बातें बार बार करते जाते, एक ही बातें, वही वाले किस्से, अब कौन सुने इतनी देर। अल्लाह अकबर, तो दलाल है सीधे रास्ते से हट जाना, जन्नत के रास्ते को खो देना, कितनी भारी कीमत दे रहे हैं ना ये। और ये तिजारत हर कोई कर रहा है, हर कोई। उसके सामने दो चॉइसेस हैं, चाहे गुमराही ले ले, चाहे हिदायत ले ले। अब वो उसकी चॉइस है कि वो क्या चीज खरीदता है। ये तिजारत हो रही है ना, खरीद ली उन्होंने तो उसको जाहिर है खरीदने के लिए कुछ देना पड़ता है ना, कोई कीमत तो देनी पड़ती है ना। क्या कीमत है हिदायत की? हिदायत की भी तो कोई कीमत होगी और गुमराही की भी कोई कीमत होगी। क्या कीमत है? कोई कीमत आपको देनी पड़ रही है? हाँ देनी पड़ रही है ना आपको। आपको कुछ छोड़ना पड़ता है फिर ही आप बैठते हैं, फिर ही आप पढ़ते हैं, फिर ही आप ये सीख रहे हैं ना? तो हिदायत की कीमत है। सहाबा ने बहुत भारी कीमत दी थी, उन्होंने दुनिया की तकलीफें उठाई थी, आजमाइशों से गुजरे थे, कुर्बानियां दी थी, घर बार छोड़े थे। और गुमराही की भी कीमत है, गुमराही की कीमत है हर तकलीफ से बचना, हाँ अपने मफाद को बचा लेना, यही के लिए सारा कुछ बना लेना, अल्लाह के रास्ते की तरफ ना आना, ये इसकी कीमत है। तो इन्होंने इजी रास्ते को लिया, ये इजी इजी है। और हिदायत के लिए तो कीमत चुकानी पड़ती, जो एक्सपेंसिव है हिदायत, ना ऐसे ही मुफ्त थोड़ी मिल जाती है। इट्स वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती है, यू रियली हैव टू पे अ प्राइस। जो चीज जितनी कीमती होती है, जाहिर है आप देखें, आप हीरों के लिए कितनी बड़ी कीमत देते हैं, कोई पत्थरों के लिए भी कोई कीमत होती है? तो ये दलालत जो है तो वो तो ऐसे ही है कि अपने मफाद को बचा लिया, आसानियां आसानियां कर ली, बस यहीं के लिए सब कुछ अपना फायदा देखा, ये इसकी कीमत है, ये गुमराही है। तो हिदायत तो हीरों से भी बढ़ के कीमती चीज है, इसके लिए आपको एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, मुफ्त नहीं ऐसे मिल जाती। अगर आप प्राइस नहीं पे करना चाहते, कुछ भी नहीं लगाना चाहते, कैसे मिलेगी हिदायत? ये तो फर्स्ट स्टेप है अभी, कि आप ये बस देख रहे हैं, अभी सिर्फ ये जान रहे हैं कि रास्ता सीधा कौन सा, अभी तो चले ही नहीं इसके ऊपर। अभी ये कुरान का सीखना तो सिर्फ ये है, हम बस अभी तो हमें आंखें मिल रही हैं, हम अंधे थे समझ ले, हमें बस आंखें अभी बिनाई थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आने लगी है, अभी आहिस्ता आहिस्ता रास्ता नजर आएगा, अभी हमारी शुरुआत है, फिर उसके बाद हमने उस रास्ते पे चलना है, हमने अल्लाह से दुआएं भी करनी है, अल्लाह तू हमें मंजिल तक पहुंचा देना, फिर उस रास्ते पे हमने कायम रहना है मरते दम तक। यू हैव टू पे अ प्राइस, प्राइस देने के लिए तैयार रहिए। अगर आपने से कोई ये सोच रहा है कि मुफ्ती में मिल जाएगी, तो वो वापस चला जाए, क्योंकि मुफ्त नहीं है ये। इसकी प्राइस पैसे नहीं है, इसकी प्राइस आपकी वक्त है, आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है, आपकी साबित कदमी है। और इसके चलने में भी प्राइस पे करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को पीछे करना पड़ेगा, अपने नफ्स को कुचलना पड़ेगा, हाथ को कहीं को मारना पड़ेगा, अपनी मर्जियों को कहीं को गिव अप करना पड़ेगा। तो हिदायत एक प्राइस टैग के साथ आती है, याद रखें। जो ये मुनाफिकीन देने को तैयार नहीं थे, मुनाफिक ये प्राइस नहीं पे कर सकते थे, कह रहे थे बहुत कॉस्टली है, नहीं ये ले लो दलालत। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, तो उनको उनकी इस तिजारत ने कोई फायदा नहीं दिया, कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि उनकी ये तिजारत तो सरासर घाटे की है, उन्होंने गुमराही को पसंद कर लिया ना, तो ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है जो उन्होंने किया। वमा कानू मुहतदीन, और नहीं थे वो हिदायत पाने वाले, ये लोग कभी हिदायत नहीं पा सकते थे, इनकी प्रायोरिटीज ही अलग हैं, तो ऐसे हिदायत कहां से पाएंगे? हिदायत क्या है? वमा कानू मुहतदीन में भी हिदायत है ना, हिदायत पाने वाले। हिदायत पाने वाले कौन होते हैं? जो रास्ता देखे, फिर उस पर चले, फिर मंजिल तक पहुंचे, राइट? तीनों मतलब याद है ना, तो ना तो ये रास्ता देखने को तैयार है, ना इस पे चलने को तैयार है, तो मंजिल तक तो वो तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, मंजिल तक पहुंचना तो फिर कैसे पहुंचेंगे, वो तो दूर की बात है। जो रास्ता देख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा रास्ता सीधा कौन सा है, जो चल ही नहीं रहा उसके ऊपर, किधर मंजिल तक पहुंचेगा? तो ये वमा कानू मुहतदीन, इसका एंड रिजल्ट क्या है? हिदायत नहीं पाएंगे, ये मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो आप पहले तिलावत सुने, इन आयात को गौर से देखें, एक एक वर्ड को देखें, सोचें कि मुझे इसमें क्या बात समझ आई है, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि क्या निशानियां थी इंशाल्लाह ताला कि और क्या ये रिजल्ट निकला।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
اب یہ ماں کانو مہتدین تک کیسے پہنچے؟ نکال لیں آیت نمبر 8. نمبر 1 ان کا قصور کیا تھا؟ یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے، مگر ان کا یہ کہنا صرف زبان سے تھا، اندر کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ سنا دیا، وما ہم بمؤمنین، یہ نہیں فرمایا کہ ان کا ایمان کمزور ہے یا ان کا ایمان تھوڑا ہے، فرما دیا ان کا ایمان ہے ہی نہیں. نمبر 2، ان کے اندر کیا تھا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکا دیتے تھے اللہ کو اور ایمان والوں کو. میں بھی دل میں سوچوں، ایویلویٹ کروں کہ کہیں میں تو نہیں دھوکا اپنے آپ کو دے رہی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. نمبر 3، ما یشعرون، سمجھ ہی نہیں ہے ان کو، سوچتے ہی نہیں ہیں، کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا ہی نہیں ہے. نمبر 4، فی قلوبہم مرض، ان کے اندر مرض ہے، بیماری ہے. نمبر 5، کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ان کی نشانیوں میں سے بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ بار بار جب انسان بولتا ہے نا، اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں تو ایسے دجال اور ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے تم کو سنی ہوں گی، تو تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ مبتلا کر دیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ نہ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی نہ جھوٹ بولے. تو جھوٹ اتنی بری چیز ہے. تو یہ ان کی 5th نشانی ہے کہ جھوٹے ہیں. نمبر 6، تفسدوا فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین میں فساد کرنا بھی ان کی ایک یعنی وہ ہے. اچھا، ایک اور بات ان کی کہ نحن مصلحون، اپنے آپ کو کہتے اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں. آگے نمبر 7 ہے یا 8 ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ ہے ان کا لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، علم سے آ رہی ہیں، جاہل ہیں بالکل. اچھا، پھر نمبر 9، مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں. نمبر 10، بھٹک رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو انہوں نے تجارت کی اشتروا الضلالۃ بالہدا, ہدایت کی بجائے اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. ہدایت بھی خرید سکتے تھے مگر اس کے بدلے الٹا کیا کیا, گمراہی لے لی. تو اس کا نتیجہ اب, اس کا اینڈ ریزلٹ اب کیا ہے؟ وما کانوا مہتدین, یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے, یہ ان کا انجام ہے. تو ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں ان آیات کی روشنی میں, کس درجے پہ ہمارا ایمان ہے, کمزوری پہ ہے یا کہاں کھڑے میں ہم. کیونکہ ایمان جب کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کسی دن انسان اس سے نکل کے منافقت میں نہ انٹر ہو جائے. کیونکہ یہ انسان کی آخرت کو خراب کرنے والا ہے, ہماری آخرت کے لیے خطرہ ہے منافقت, نفاق کا مرض. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو منافقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص فرما دے, ہمارے ایمانوں کو خالص فرما دے اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے. آمین یا رب العالمین.